الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى الذي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو بزرگوار بھائیو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو بغیر شرکت غیر اپنی قدرت سے بنایا ہے اور پیدا فرمایا ہے اور اس پوری کائنات کا مالک حقیقی ایک اللہ ہی ہے اور ہمارا بھی مالک حقیقی ایک اللہ ہے اور پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے دنیا کی کوئی چیز اس کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے نہ دنیا کے بادشاہ اور ملک چلانے والے اور نہ دنیا کے میرے دوست دعوے دار جتنے بھی ہیں یہ سب ہاں مالدار ہوں یا غریب ہوں ایشین ہوں یا امریکن ہوں عرب ہوں یا عجم ہوں مرد ہو یا عورتیں ہوں جتنے بھی ہیں اور جتنے لوگ ہیں جتنے مخلوقات ہیں ये सब के सब एक अल्लाह के कंट्रोल में है और उसी के चलाने से पूरा निजाम चल रहा है। दुनिया के हालात का ताल्लुक जो है दुनिया के इंसानों का, इसका ताल्लुक न मुल्क से है, न माल से है, न मुल्क वालों से है, न माल वालों से है, हाँ, और न इसका ताल्लुक दुनिया की मेरे दोस्तों आजकल की तरक्कियात के तमाम चीजों से है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक अल्लाह की जात से है और एक अल्लाह ही के कंट्रोल में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला शाहरुख खुद फरमाते हैं, अला कान खोल कर सुन लो, लहुल खल्क, पूरी मखलूक वो अल्लाह की है, लहुल खल्क, कायनात की हर चीज का मालिक एक अल्लाह है, वो है, वलहुल अम्र, और इस पूरी कायनात पर चलेगी एक अल्लाह ही की और किसी की नहीं चलेगी। ऑर्डर किसका चलेगा बोलो? अल्लाह का है। मालदार के माल पर ऑर्डर अल्लाह का चलेगा, मालदार का ऑर्डर नहीं चलेगा, वो जो चाहेगा वो नहीं होगा। इस आपने देखा होगा मालदार बाजी लाइन बाजी मर्तबा किसी काम के लिए अंदाजुन पैसा भी खर्च करता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं बनता। दुनिया के बड़े बड़े मेरे दोस्तों अपनी दुनिया की तरक्की के दावेदार लू की भी मेरे दोस्तों कहीं नहीं चलती, हाँ चलेगी एक अल्लाह की, और उसी के इरादे से तमाम निजाम आलम का कंट्रोल है। अला लहुल खल्क वल अम्र, वो अल्लाह कुरान में कह रहा है, वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादी लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह ताला दुनिया के इंसानों के हालात हमेशा एक ही रखे अच्छे और रोजी के दरवाजे खुले रखे हमेशा, तंगी न लाए, तो ये तो फिर ये इंसान बागी हो जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं तो बागी हो जाएगा। वलौ बसत अल्लाह रिज़्क़ा लिइबादी, अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रोजी के कुशादगी कर दें, लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में बगावत उतर आएंगे, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, आसमान से अपने बंदों की रोजी एक अंदाज से उतारता है जितना चाहता है, जब चाहे तंगी ले आओ, जब चाहे, हाँ क्यों, ताकि बगावत पर न उतरे। इस वक्त जो दुनिया में बगावत पर इंसान उतरा हुआ है वो इसीलिए है, आजकल पैसा बहुत आ गया, माल की फरावानी है, हाँ इसलिए बगावत पर है। दिन ब दिन इंसान बगावत की लाइन इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर आसमान से अल्लाह की तरफ से फैसले इसके हालात के बिगाड़ने के आ रहे हैं। आज के दौर में इंसान अपनी तरक्की का दावेदार जितना है कि जितनी इसने तरक्की की है, दुनिया में किसी दौर में इतनी तरक्की इंसान ने अपनी लाइनों में नहीं की है, लेकिन आज के दौर में जितना इंसान परेशान है किसी दौर में इतना परेशान नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चांद पर पहुंचने का दावेदार क्यों ना हो, वो भी इतना परेशान है। हर आदमी अपनी अपनी लाइन में परेशान है, मालदार मालदारी में, गरीब गुर्बत में, तरक्की याफ्ता अपनी तरक्की याफ्ता होने की हालत में हर एक परेशान है। क्यों? कि इस दुनिया में इनकी नहीं चलेगी, अल्लाह की चल रही है। ऊपर से जो फैसले आते हैं वही होते हैं जमीन पर। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समा, ए बच्चे मैं कहने वाला था इसको, तुझे जाना चला जा, अब आगे बैठने मत देना, तुम्हारा है क्या, अभी से कहां से परेशानी, आगे पे जाओ, घूमने गया अब आएगा। बयान के बाद हम भी बाल बच्चों वाले ऐसे रहे हैं। हाँ तो पहले से समझा हो तो जो उठान नहीं हो अंग्रेज बैसी जाओ नहीं जवान नहीं तो फिर जरा कुछ कहा ही नहीं उसकी मर्जी छोड़ दिया। अभी दोनों देखा कि गया है ये भी जाने की तद भी करते होंगे ये है तो बच्चे बच्चे हैं हम भी कौन से बच्चों से कम हैं इसमें ही बहुत से जब जाएंगे तो दिल में आकर उठेंगे। तो मेरे भाई मेरा अजीज हो इस पूरी कायनात का निजाम अल्लाह अल्लाह तआला फरमाती है युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समा इलल अर्द कि पूरी कायनात के निजाम को अल्लाह आसमान से चला रहा है और उसी का ऑर्डर है असल बाकी किसी का ऑर्डर नहीं है। कितने ही मेरे दोस्त है पार्लियामेंटों में कितने ही अपने दोस्त अपने फैसले करें होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। फिरौन को अल्लाह ने हुकूमत दी थी ये दो नशे हैं दो एक तो ये दारू का नशा है और एक माल और हुकूमत का नशा है। हाँ ये दो नशे हैं और इन दो नशों का जो शिकार होता है ना उसे कोई नहीं समझा सकता। फिरौन को अपनी हुकूमत का नशा था तो फिरौन अपनी हुकूमत में जो चाहे फैसले करता था और बनी इसराइल के लिए किस्म किस्म की तकलीफें खड़ा करता था। उसे ये पता जब चला कि बनी इसराइल का एक बच्चा तेरी हुकूमत के खत्म होने का जरिया बनेगा तो इसको क्या सोची कि बनी इसराइल का बच्चा कहोगा तो मैं बनी इसराइल के बच्चों को जीने नहीं दूंगा। पास किया कायदा कि जो भी बनी इसराइल के बच्चे हों उनको बच्चे पैदा होने के साथ जबा कर दो जीने मत दो। हजारों बच्चों को उसने जबा किया है इस जालिम ने। लेकिन अल्लाह का फैसला क्या था अल्लाह का फैसला ये था कि बनी इसराइल का वो बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत में पैदा होगा तेरे घर में प्रवेश पाएगा और तेरी हलाकत का जरिया बनेगा। फैसला वहां का ही है चूंकि अल्लाह ताला शानू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया उसकी हुकूमत में और उस जमाने में जिस जमाने इसका एक कायदा था कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा पैदा हो तो दुआ करो और उन्होंने पैदा किया। अरे मूसा अलैहिस्सलाम की मां को बहुत परेशानी थी कि तो अब मेरा बच्चा कि क्या होगा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में बात डाली कि बच्चे की हिफाजत के लिए संदूक बनाओ संदूक में रखो और उसे पानी में नहर पानी में तैरता कर दो। वाउहैना इला उम्मे मूसा अनर्जई हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां से कहा कि दूध पिलाओ तुम्हारे बच्चों को घबराओ नहीं। फैजा आखिर क्या नहीं फालके फिलियम जब तुझे दिल में खटका है और डर लगे कि अब मेरे बच्चे को ये लोग जबा कर देंगे तो उसको दरिया में डाल देना। वलाता खाफी वलाता जनी ऑर्डर वहां से है कि तू अपने बच्चे को दरिया में डाल भी देना और जरा भी डरियो मत और जरा भी दिल में खटका मत रखियो इसका कि ये खत्म होगा नहीं होगा। इनारादू इलेक मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास लौटाऊंगा अल्लाह ने कह रहा ऊपर से एक बात को इनारादू इलेक और हम उसे रसूल बनाएंगे। ये भी कोई किया क्या मतलब कि तेरा बच्चा तेरे पास आएगा जवान भी होगा और फिर नबी भी मैं बनाऊंगा इसको और फिरौन इसका बाल भी का बोलो, नहीं कर सकता। इन नाराज देरी को जा रू मिलन मुसनीन। अच्छा, अल्लाह का, अल्लाह की हिकमत का अजीब तकाजा है। हर मूसा की मां ने उनको संदूक में रखा और संदूक में रखकर पानी में तैरता किया। जब आपने आप तो खूब जानते हैं कि संदूक कैसा बनाया होगा जिसमें पानी न जाओ है। पानी न जाओ तो इसमें इतना पैक है, वो हवा भी नहीं जाएगी। छोटे बच्चे का ऐसे संदूक में जीना मुश्किल है हमारे नजदीक। तो अल्लाह ने हजरत मूसा को उस संदूक में जिंदा रखा। पानी के नहर में हजरत मूसा के अलैहिस्सलाम आगे उनको तैरता कर दिया और अल्लाह ने संदूक को हुक्म दिया कि जाओ फिरौन का जो है बंगला वहीं जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनकी बहन से कि बेटा तू जा देख रहे मुन्ना का संदूक कहां जा रहा, जा देखती रही हो। فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا। قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے کہ اسی کو اپنے گھر میں اس نے اٹھایا ہے کہ جو آئندہ چل کر اس کے لیے غم کا اور پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے پہنچایا وہیں کہاں، فرعون کے جو بنگلہ تھا اس کے کنارے پر۔ फिरौन के कारीगर थे, देख रहे थे क्या हुआ ये, क्योंकि कोई संदूक आ रहा है। फिरौन के कारीगर ने संदूक को उठाया और खोला तो उसमें एक बहुत नौनिहाल बच्चा है। फिरौन की बीवी का कोई औलाद नहीं थी। फिरौन की बीवी ने देखने के साथ अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मूसा फिरौन के और फिरौन के घर वालों की मोहब्बत, तेरी मोहब्बत हमने उनके दिल में डाली थी, हमने मोहब्बत डाली थी तेरी, और इस मोहब्बत की बुनियाद पर फिरौन की बीवी का कि इस बच्चे को तो जिंदा रखने का है, अपना बच्चा बनाएंगे। हाँ, बच्चा उठा लिया। अब बच्चा उठाने के बाद, छोटा बच्चा है तो दूध का पिला नहीं पड़ेगा, तो जिसको भी दूध पिलाने के लिए दो तो बच्चा दूध पीता ही नहीं। अल्लाह मना कर दिया, वहरम ने आज मरा दिया, हमने मूसा पर किसी और औरती औरत का दूध पीना हराम कर दिया था, बिल्कुल मत पीना। वो पी नहीं रहे, अभी परेशान है, अब इसको ठग करना। तो उनकी बहन देख चुकी है, वो तो वहां गया है। तो उनकी बहन पहुंची वहां, वो परेशान है। इनकी बहन ने कहा कि एक खानदान है, हो सकता है उसका ही दूध पी हुए और वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो तो परेशान था ही, फिर तो फौरन को कहां है, लाओ 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 लाओ। तो हजरत मूसा की बहन की मग अम्मा चलो चलो जल्दी, मुन्ना किसी का दूध नहीं पी रहा, चलो चलो चलो। हाँ, और अपनी मां को बुला के लाई और हजरत मूसा की मां उसके घर में बंगले में पहुंची और हजरत मूसा को उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। अभी तक दिमाग कुछ सोचता नहीं उसका। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब आप अपने बच्चे, इस बच्चे को दूध आपको पिलाना है और तुम्हारा महाना वजीफा भी है, उसी के खजाने से पैसे उसके हजरत मूसा की मां का तनख्वाह तय करवाई और उसी के घर में और हजरत मूसा की मां की गोद में हजरत मूसा की खुदा परवरिश फरमाई। एक मरतबा फिरौन ने मूसा को अपनी गोद में लिया तो हजरत मूसा ने एक तमाचा मारा। बचपन से ही फिरौन एकदम घबराया कि ये वो तो नहीं मूसा। लेकिन उसकी बीवी क्या कहती है, अरे मूसा तो कितने कत्ल तो कत्ल कर चुका होगा, बीबी मूसा नहीं कत्ल हुआ जो अच्छा है। तो खामोश हो गया। ہر زمانے میں مرد اپنی بیوی کے غلامی ہوتے ہیں. فرعون ملک مصر کا بادشاہ ہے اور فرعون کی چپنی بیوی کے سامنے نہیں چل رہی. اس میں ایسا ہی ہے مطلب جماعت پاس بہت جگہ سے پر گھر والی نہیں مانتی. تو گھر والی کو تو لایا کہ وہ تجھے لے گئی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. ہاں تو اللہ کے نبی نے 1300 سال پہلے اس کی خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مرد اپنی عورت کا غلام ہوگا اور مردوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی. وہ جو کہیں گی وہ کریں گے. اللہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں کہیں کریں گے. ہاں ہماری شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عورتوں کے ستے میں. مرد تو نہیں چاہتا, وہ تو اس کو تو جیب سے پیسے نکالنے کے ہیں کہ وہ کہتی ہے ناک کا پاس ہے. لوگوں شو کیسے ہیں لوگوں نے بدو اپنے لیدوں اپنا آپ تو پڑشے جنے کیوں کہتی وہ. ہاں تو فرعون نے چھوڑ دیا. ہرموسا الحمدللہ جوان ہوئے فرعون کی حکومت میں, اور اللہ نے پھر اسی فرعون کے پاس ان کو نبی بنا کر بھیجا. اور پھر اللہ نے اسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کی خدا نے مدد فرمائی, اور اللہ نے فرعون کو اپنی تمام لاکھوں کے لشکر کے ساتھ سمندر میں خدا نے غرق کیا, اور اللہ نے اسی ملک مصر کا مالک حضرت موسیٰ کو اور اس کی قوم کو بنایا. یہ اللہ کس کا آرڈر چلے گا بولو؟ اللہ کا. اللہ کا آرڈر تمہاری موافقت میں کب ہوگا؟ مسئلہ یہاں ہے مزا بھیا ندی رام سے پلا ہوا چند پلا ہوا چند حکومت آگے سے کچھ کوئی نہیں ہے ایسے. تو ایسا ہے, تو نے اپنے خلاف اللہ کو کر رکھا ہے. تو اللہ تیرے خلاف اللہ کے آرڈر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث میں کہ دنیا کے بادشاہوں کے دل ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہاں جب تم میری مانو گے میں ان کے دلوں میں تمہاری محبت اور رحم ڈالوں گا, اگر جب تم ہمیں یہ خلاف ورزی کرو گے تو ان دنیا کے بادشاہوں کے دل میں تمہارے لیے اور کچھ بات دے دوں گا. ان کو برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. ہم ایسے ہیں. ہاں اولاد کو نافرمان اللہ بناتا ہے کیونکہ تو اللہ کا نافرمان ہے. اوپر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دوست معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. حضور نے جبریل سے پوچھا, ارے جبریل کیا ہے یہ اوپر نیچے سے اوپر کیا چیز آ رہی ہے اور یہ اوپر سے نیچے کیا جا رہی ہے؟ جبریل نے کہا, حضور نیچے سے آپ کی امت کے اعمال آ رہے ہیں اوپر, اور اوپر سے نیچے ان کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے جا رہے ہیں. تو مسئلہ ایسا نہیں میں غریب ہوں, مسئلہ کہ میں نافرمان ہوں. آج لوگ غریب کیا پر ہمارے پاس سے کہیں چھ نیٹل میں پریشان ہے, کہیں مالداروں کے پاس بہت ہے, کیوں پریشان ہیں؟ ارے بھائی ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا, تم سے زیادہ ٹینشن ان کو ہے, پریشان ان کو ہے. کیوں؟ کہ ہم غریب بھی اور مالدار بھی اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کی ناراضگی کے کام اور زندگی گزار رہے ہیں جس پر آسمان والا ناراض ہے اور ناراض ہو کر ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے اوپر سے. ہمارے مالدار ہی سچے ہوں, مالدار نے چھوکری آپس تو گھر میں رات ہی رہے نہیں ہوتا. क्यों? कि ये भी नाफरमान, वो भी नाफरमान, और इसकी बेटी भी नाफरमान, तो अल्लाह की तरफ से फैसले वही आएंगे परेशानी के। माँ बाप ने अपनी बेटी को नेक और दीनदार नहीं बनाया, और माँ बाप ने अपने बेटे को नेक और दीनदार नहीं बनाया, एजुकेशन दिलाया, एजुकेशन लो, डिग्रियां लो, सब दिलाया, अल्लाह का फरमा बरदार नहीं बनाया, तो अंजाम क्या है? कहीं भी हैं परेशान हैं। और ये कुरान का फैसला अल्लाह ने कुरान में किया है, अल्लाह ने अपने दो जाब्ते कुरान में बताए हैं। एक जाब्ता अल्लाह का कुरान में यह है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा वो मोमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। यह अल्लाह का फैसला है कि जो भी मर्द औरत हो, कहीं के भी हो, अपने ईमान को बनाकर अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करके और अल्लाह की जात के वादों पर यकीन करके जिंदगी गुजारेंगे, और जो कुछ अल्लाह के अवामिर हैं उनको पूरा करेंगे, जिसको हमारे साले से कुरान ताबीर कर रहा है, और नेक आमाल का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम जरूर बिज़रूर उन्हें हयात तय्यबा देते रहें, देंगे नहीं, देते रहेंगे। लाम ताकीद नून ताकीद दाखिल मुबारे युफीदुल इस्तिमरार, जो हमारे अलीम इसको समझ लेंगे कि हम इन पर इन्हें नेक और खुशहाल जिंदगी देंगे, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें हयात तय्यबा जरूर भी जरूर देते रहेंगे। ये फैसला उसका वहां से, चाहे डिग्रियां हो या ना हो, माल हो या हुकूमत हो या कुछ भी हो, हुकूमत होगी तो हुकूमत में खुशहाल जिंदगी देंगे, माल होगा तो माल में खुशहाल जिंदगी देंगे, और गरीब होंगे तो गुरबत, गरीब को मालदार बनने की जरूरत नहीं है, उसके अगर ईमान है, उसके पास आमाले सालेहा है, तो अल्लाह ताला शानहु उसे हयात तय्यिबा जरूर देंगे। ये फैसला अल्लाह का है, किसी दुनिया के इंसान का नहीं है। दूसरा फैसला अल्लाह का कुरान में यह है, मन आरबान जिक्री फईन लहू माई शतन दम का, कि जो लोग भी हमारे हुक्मों से एराज करेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, झूठ बोलेंगे, खुदा ने जिन चीजों से मना किया है उसको इख्तियार, चाहे वो करोड़पति का बाप हो, झूठ बोलना तो मना खुदा की तरफ से हराम है, वो अपने कारोबार को चाहे करोड़ों की अरबों की उसके कारोबार हो इसके पास, लेकिन उसमें खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो घर में खुदा के अहकाम के खिलाफ वर्जी है, घर में हमारे बच्चों की जिंदगियां अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी और तरीकों के खिलाफ है, जिस नबी की जिंदगी के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में इस बात का फैसला सुनाया है कि हम अपने नबी की जिंदगी से राजी हैं, वो रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने तय पसंद किया है और मैंने पसंद करके दिया है। अल्लाह ने इस उम्मत को दीन पसंद करके दिया है। आप किसी के मेदोस्तों फल वाले के पास जाएं और उसके बाद फल होते टोकरे में, तो वो मेदोस्तों तुम्हें चुन चुन के पसंद करके देता है, तो खुश होते हो। अल्लाह ने पसंद करके दीन दिया है। हाँ, उस दीन के खिलाफ हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कमाना, हमारा खर्च करना, हमारी शादी करना, हमारे कपड़े पहनना और कपड़े सिलाना और कपड़े इस्तेमाल करना, और हमारी हजाम करना, हमारे बाल कटवाना, ये जितनी चीजें मेरे दोस्तों हैं वो अल्लाह के नबी के तरीके खिलाफ जिंदगियों में है। ऊपर से फैसला ये हुआ है, फैन लहू माई शतम बंग का, हम उनकी जिंदगी को तंग कर देंगे, कहीं चैन नहीं होगा इन्हें। यही हो रहा है, और दुनिया के मालदार मुल्कों में मेरे दोस्तों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मालदार मुल्कों में। मैं एक मरतबा बैतुल्ला में था मक्का मुकर्रमा में, اور مکہ مگر جمعہ کے دن تھا, تو جمعہ کے دن میں خطیب نے خطبے میں خودکشی کی برائی اور اس کے گواہ ہونا خطبے میں لا کے رکھا. اس کے معنی کو اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے. خطیب نے جمعہ کے خطبے میں دنیا میں خودکشی کرنے والے اور آپ گھات کرنے والے مزدور نہیں ہیں, آدیواسی نہیں ہیں, بنگلوں میں رہنے والے ہیں. بنگلوں میں رہنے والے دنیا کے مالدار ملکوں میں جو رہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے سپر پاور کہتا ہے, اس کے ملک میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. آپ گھات لوگ کر رہے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, کیا ہے کہ زندگی ایسی خدا نے تنگ کر دی کہ اس کا علاج موت کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آیا. یہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں, راحت و آرام کے نقشے میرے پاس ہیں, اور پھر مجھے راحت اور آرام اور چین نہیں ہے, تو اس سے تو مر جانا بہتر ہے. ہاں ہاں, اس ہندوستان اور گجرات کے واقعات میں ہے. بہت 100 سال پہلے کی بات ہے. دیوالی کل ہونے والی ہے اور ایک انجینئر گلے میں پھانسا دے کر اوپر میرے دوستوں لٹک گیا اور مرا دیوالی کے دن. انجینئر ایم ڈی, ڈاکٹر بھی ایم ڈی, اور ڈاکٹر کی بیوی بھی ایم ڈی, دونوں ایم ڈی ہے. اور ڈاکٹر کی بیوی ایم ڈی رات کو کھا کے صبح مر گئی, اور اس نے اپنی سرانے پر سرانے کے لیے ایک چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ میں خود اپنی ذات سے خودکشی میں نے کی ہے, میرے شوہر کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے, میرے شوہر کو پریشان نہ کیا جائے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہے تو ہماری پریشانیوں کا علاج جو ہم سوچو نہیں کہ چھوکرا نے افریقہ موکلی سے پریشان دور دیجیے سے کینیڈا موکلی دیشوں ہم دیش آگام چھوڑی بیجا گام کہیں دھندو کچھ بھی کر تو, لیکن تیری زندگی میں جب تک اللہ کی اطاعت نہیں آئے گی, اللہ کے سامنے مجرم بن کر توبہ نہیں کرے گا اور اللہ کو راضی نہیں کرے گا, وہاں تک تیرے حالات درست نہیں ہوں گے. کہیں بھی مسئلہ کہیں یہاں کا نہیں ہے, پوری دنیا کا حال ہی ہے. پوری دنیا میں کوے کالے ہیں. ہاں اس لیے بھائیو, اللہ نے اس محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا ہے, نبی والی محنت. اللہ کی یہ سنت ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی انسانوں میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے اس زمانے میں. لیکن حضور آخری نبی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ کے نبی کی جو محنت ہے, جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں, جو امت چھوڑ چکی تھی اور چھوڑ چکی ہے, اجتماعی طور پر امت نبی والی محنت کو چھوڑ چکی, جس کی بنا پر نبی والی زندگیاں زندگی کے ہر شعبے سے ختم ہو گئی, اور اللہ کی ناراضگی والی زندگیاں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آ گئی, جس کی بنیاد پر آسمان سے جس امت کو خدا نے عزت دی تھی وہ عزت سے ہٹ کر ذلت کے میدان نقش میں آ گئی, ذلت میں آ گئی ہے. اس امت کی دعاؤں پر اللہ تعالی حالات کو بدلتا تھا, آج امت کی دعا اپنے لیے قبول نہیں ہو رہی. اس کے لیے اس محنت کی قدر کر لو. اللہ نے محنت تو تم تک پہنچا دی ہے, اور تمہیں دین کی محنت میں لگ کر محنت بھی سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ محنت ہے کرو, جس محنت کے نتیجے میں جیسے اللہ کسان अपनी मेदों से किस खेती की मेहनत करता है और सही तरीके से करता है तो अल्लाह फिर अपनी कुदरत से उसकी जमीन में से गल्ला उगाते हैं, उसको देते हैं। ऐसे में दोस्तों हिदायत की मेहनत कयामत तक के लिए, इस उम्मत को दीन दिया गया, दीन की मेहनत दी गई और अल्लाह की किताब दी गई कयामत तक के लिए कि अगर ये उम्मत उसके मुताबिक अपने आप को चलाएगी और उस मेहनत पर अपने आप को डालेगी तो अल्लाह आसमान से इनके दिलों में हिदायत के नूर का फैजान करेगा और इनकी जिंदगियों को अपनी इताअत पर खुदा डालेगा और इस इताअत पर आने के बाद खुदा इनके हालात को बदल लेगा, इनके हालात बदलेगा। सूरह कसस को पढ़ो, सूरह कसस जो 20वें पारे में, इसमें अल्लाह ने फिरौन और बनी इसराइल के वाकयात को तफसील से बयान किया है कि अल्लाह ने इनके हालात को कब बदला। हाँ, वही हाल है इस उम्मत का। हम भी मेरे दोस्तों अगर अपनी जिंदगी में, अपने घरों में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो दीन रहमत देकर गए हैं, अगर उस दीन को जिंदगी में लाने की मेहनत करेंगे और मेहनत को इख्तियार करेंगे और कुर्बानी देंगे और फिर अल्लाह से कहेंगे ऐ अल्लाह हमें वो हिदायत दे दे जो तू चाहता है, अल्लाह वो हिदायत देगा मेहनत के बाद। जैसे किसान को खेती की मेहनत करने के बाद फिर वो कहता है अल्लाह मेरी खेती में बरकत दे, तो अल्लाह ताला मन को टन के हिसाब से वापस करता है, अल्लाह का जाप्ता है। कयामत तक इंसानों को खाना मिलता रहे उसके अल्लाह ने खेती का एक सबब दुनिया में चलाया और इंसान उस सबब को इख्तियार कर रहा है और इसे अपनी जमाने अपनी जरूरत पूरी कर रहा अल्लाह मियां। ऐसे इंसानों की हिदायत की जरूरत कयामत तक के लिए है और इंसान की जरूरत यह है मेरे दोस्तों, इंसान की जरूरत पूरी होती रहे इसके लिए अल्लाह ने इस उम्मत को खत्म नबूवत वाली मेहनत का सबब दिया है। अब नबी नहीं आएगा, नबी की मेहनत ये उम्मत करेगी और इस उम्मत के इस नबी वाली मेहनत के करने की नतीजे में अल्लाह आसमान से हिदायत का फैजान करेगा। ये कहा जा रहा है अपनी हर मस्जिद में, अपने हर घर में नबी वाली मेहनत को जिंदा की जाए। हलमा इजाजा रहनुमा करते थे ये मैं चार आमाल जो दावत की मेहनत में उम्मत को अल्लाह की राह में निकलकर इन आमाल को जिंदा करने का जो मैं कह रहा हूं, मैं इन आमाल को आमारे नबूवत समझता हूं कि आमारे नबूवत है और इसको जब भी मेहनत करोगे वजूद में लाओगे आसमान से हिदायत का मेरे दोस्तों फैजान होगा। जो भी करेगा जहां भी करेगा सीधी सादी ये मेहनत दुनिया के उन मुल्कों में जहां से दुनिया में जिनाकारियां बेशर्मियां फौज में दो सप्लाई होता था, उन मुल्कों में जब ये मेहनत हुई तो खुदा वहां के हालात बदल दिए। मसला ये है इस मेहनत को जिंदा की जाए। चार महीने चिल्ले का मसला नहीं है, चार महीने चिल्ले का मसला नहीं है, चार महीने चिल्ले का तो मसला यूं है कि इस मेहनत को सीखो समझो फिर इस मेहनत को अपने घरों में अपनी हर मस्जिद में और अपनी जिंदगी के हर मौके पर इसको जिंदा करो। दावत अल्लाह की तरफ बुलाना, आखिरत की दावत देना, हमारी जुबानों पर आखिरत नहीं है, अल्लाह नहीं है, हमारी जुबानों पर तो मखलूक है। आम कैसे ने पिलो, आम कैसे ने पिलो, आम कैसे ने पैसा दी कैसे ने अफ्रीका जैसू तो काम थी जैसे, हमारी जुबानों का तो बोली अल्लाह करेगा तो है ही नहीं, खुदा के गैर की जुबान पर बोले। आखिरत और मौत को तो हम और आप 24 घंटे में 15 मरतबा 2 मरतबा याद नहीं करते कि मरवानों से कौन कहता अपने घर में अपने बच्चों को कि बेटा एक दिन मरने का है, कौन कहता अपनी बीवी को जब बीवी गलत काम गलत बातों की ये करती है कि भाई तरतरे मैंने मरवानू छे मरया पीछे आप शू छू छे, उस मौत का इंतजार नहीं है, आखिरत का ध्यान नहीं है, मुझे मरना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। और अल्लाह के नबी ने तो कसम खा के हर एक से फरमाई, उम्मत को फरमाया है वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बादल मौत दारुन इल्लल जन्नत विन नार, कि मैं उस अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं कि जिसके हाथ में मेरी जान है, इंसान मरकर दुनिया से जाएगा तो वहां उसके दो ठिकानों में से एक ठिकाने में जाना है, या तो जन्नत में या जहन्नम में, किसी जगह नहीं है। और वो हमेशा की जिंदगी है, वहां उसे हमेशा जन्नत में रहना है या फिर हमेशा के लिए जहन्नम में रहना है, और उसका फैसला इसे दुनिया में करना होगा। और अल्लाह ने नबियों के जरिए ये दो रास्ते समझाए उन इंसानों को, और अल्लाह के नबी को कुरान पाक दिया, और इस कुरान पाक में ये दोनों रास्ते समझाए गए, जन्नत का रास्ता कौन सा है और जहन्नम का रास्ता कौन सा है। जन्नत का रास्ता ईमान और अमल सालेह का रास्ता जन्नत का रास्ता है, और ईमान के खिलाफ शिर्क कुफ्र और खुदा के नाफरमानी का रास्ता ये सरापा जहन्नम का रास्ता है। जो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा वो हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, कोई भी हो। और अल्लाह ने कुरान पाक में अपना ज़ाब्ता समझाया, फअम्मा मन तगा वअसर अलहयात अद्दुनिया फइन अलजहीम ही अलमावा, जो दुनिया में खुदा की नाफरमानी के रास्ते इख्तियार करेगा और दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, आखिरत को भूलेगा, इसके लिए जहन्नम है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा अन्नफ्स अनिल हवा फइन अलजन्नत ही अलमावा, और जो अल्लाह से डरेगा दुनिया में भी कि मुझे तो अल्लाह के सामने जाना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, और इस खौफ से अपनी जी की चाहतों को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जी की चाहतों से उसको रुकता है, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। जी की चाहतों को पर कंट्रोल करना, हुजूर ने यही फरमाया, मेरी उम्मत का अकलमंद आदमी कौन है, अलकई सुमंदान नफ्सहू वामिल लिमा बादल मौत, मेरी उम्मत में वो आदमी अकलमंद समझदार है जो अपने नफ्सर कंट्रोल करे, अपने नफ्सर जी में जो चाहे वो नहीं, जैसे हमारा हाल हमारे जवानों का हाल है, जी ने जब चाहा मेरे दोस्तों तो इतनी इजर पहन ली, जितना चाहा तो नीचे पर पहन ली, जी ने चाहा तो मेरे दोस्तों कुर्ता ही निकाल दिया, नबी की सुन्नत के खिलाफ जी ने जो चाहा वो करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, इसका अंजाम कुरान कह रहा है, हाँ फअम्मा मन तगा वअसर अलहयात अद्दुनिया, जिन्होंने अपनी सरकशी की रास्ता इख्तियार किया, नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया और अपनी चाहतों को पूरे करने के चक्कर में पड़ गए, दुनिया ही की जिंदगी को तरजीह दी कि भाई दुनिया में कर लो जो कुछ करना है, ऐसे इंसान मौत के बाद इनका अंजाम जहन्नम है, अल्लाह की गजब की जगह है, जहां इंसान अल्लाह की बारगाह में रहम की अपील करेगा तो अल्लाह नाराज होकर गुस्से होकर कहेगा इख्सौफिया वला तुकल्लिमून, जलील होके पड़े रहो, हमसे बात न करो, रहम की अपील की गुंजाइश नहीं होगी जहां। और रोजाना इसे अजाब बढ़ाता जाएगा, कुरान में अजाब बढ़ता ही जाएगा। हाँ, वो आग जहन्नम की आग है, दुनिया की आग नहीं है, दुनिया की तेज से तेज आग जहन्नम की आग से 70 गुना मेरे तो ठंडी है, तेज से तेज तुम्हारे लोहे को पिघाल देती है जो आग, वो आग 70 गुना ठंडी है, तो जहन्नम की आग क्या होगी, उसमें इंसान डाला जाएगा। हाँ, फरिश्ते उसमें होंगे जो मारेंगे इसे, पानी नहीं मिलेगा। जहन्नमी मांगेगा पानी तो अल्लाह ताला शांत फरिश्ते सुनेंगे नहीं 500 साल तक तो। और फिर जब अल्लाह के तो कहा जाएगा क्या है, क्या पानी पीना है, तो गर्म पानी, इसे माय हमीम, गर्म पानी ये दिया जाएगा। जो गर्म पानी ये पीने के लिए जब उठाएगा तो इसका ये होंठ ऊपर चला जाएगा, ये होंठ नीचे आ जाएगा। लेकिन प्यास इतनी सख्त थी वो पिएगा उसको, और जब पिएगा मेरे भाइयों तो इसके आठ पेट में से कटकर बाहर निकल आएंगे। जानना मेरे भाइयों, सहाबा तन्हाइयों में इसको सोचते थे कि आखिरत में जहन्नम भी है, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमारा क्या होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को आपने तालीम दी है, अक्सरो जिक्र हाजिम लज्जात, तुम्हारी लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। आज तू बंगले में सो रहा है, एसी में सो रहा है, कल को तुझे मौत इस बंगले से निकालकर मैदान में मेरे दोस्तों कब्र की तन्हाई में पहुंचाएगी। वहां तेरा क्या है, उसका क्या इंतजाम किया है तूने? अरे दुनिया में शाम होने से पहले मेरे दोस्तों घर में रोशनी की फिक्र करता आदमी, घर में ये तो मेरे दोस्त 3 फीट की कब्र है, उसकी रोशनी का क्या इंतजाम किया है? अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को इसका रास्ता बताया कि 5 वक्त की नमाज अगर तुम पाबंदी से पढ़ोगे और 5 वक्त की नमाज को अदा करोगे तो अल्लाह इस नमाज के पढ़ने के नतीजे में तुम्हें कब्र के अजाब से बचा लेगा। कब्र के अजाब से बचने का रास्ता नमाज है, कहीं भी हो नमाज पढ़नी होगी। नमाज पढ़ेगा आदमी मुसलमान तो अल्लाह ताला उसकी रोजी की तंगी दूर करेगा। रोजी लेने का अल्लाह के यहां से रास्ता नमाज है, दुकानों पे दुकानें खोलने नहीं है, रोजी तो वहां से आती है, तेरी दुकान से रोजी तो ये नहीं मिलती। तो फिर समाज रिस्कुम अदून, तुम्हारी रोजी तो आसमानों में है और जो कुछ तुम्हें बताया या वादा किया जा रहा है वहां है। इसमें भाइयों मौत से पहले ये मौका है हमारे लिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी, एक दिन मौत आएगी, सब छूट जाएगा, लेकिन वहां मौत नहीं है। मरने के बाद आखिरत में मौत कभी नहीं आएगी। अल्लाह ताला शानो जन्नतियों को जन्नत में भेज देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देने के बाद फरिश्ते से ऐलान करवाएगा, ओ जन्नतियों तुम्हें हमेशा जन्नत की नेमतों में राहत में रहना है, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ओ जहन्नमियों तुम्हें जहन्नम के अजाब में हमेशा रहना है, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये ऐलान जब जन्नती सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमेशा के लिए हमें नेमतें मिल गई, हम नेमतों में रहेंगे। और जहन्नमी इस ऐलान को खुश होकर हसरत करेंगे अब हमारा क्या होगा। हक है, नबी ने खबर दी है, आमंतु बिल्लाह मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वो मलाइकत ही और मलाइका पर ईमान लाया कि मेरी आंखें जो जाहिरी निजाम देख रही हैं उस जाहिरी निजाम के पीछे अल्लाह का फरिश्तों का एक निजाम है, असल तो वो निजाम है। जाहिर में तो माल है लेकिन अल्लाह का फरिश्तों का निजाम खिलाफ है तो मेरे दोस्तों माल के होते हुए भी आदमी परेशानी का शिकार होगा। आमन तो बिल्लाही वह मलाइकत ही, अल्लाह पर ईमान लाना जैसा कि वो है अपनी जात और सिफात के अतबार से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वही सब कुछ है और उसी के हाथ में सब कुछ है। ये दिल की गहराई में इस यकीन को उतारना, अल्लाह के फरिश्तों के निजाम पर ईमान लाना, वह कुतुबी ही اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ کہا ہے سچ ہے، یہی ہوگا. قرآن میں اللہ نے جو کچھ اتارا ہے سچ ہے، یہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور آخرت میں میرا حساب و کتاب ہونا ہے. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا، میں نے یوں کیا نہیں، جو مقدر میں وہ ہوا ہے، میں نے یوں کیا پھر یوں کیوں نہیں ہوا، کسی کے مقدر میں ہونا ہونا دکھا جا چکا ہے. تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر دکھا جا چکا ہے. والباس بعد الموت، اور مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ خدا زندہ کرے گا اور مجھے حساب دینا ہے، یہ ایمان ہے. ہاں، اس کو دل کی گہرائی میں اتارنا. جب یہ ایمان اندر دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر اب آدمی اپنا قدم ایمان کے مطابق اٹھاتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر اٹھاتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا 200 روپے زیادہ مل جائیں گے، لیکن جھوٹ کی بنیاد تو جہنم میں جانا ہوگا. آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، آدمی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا کہ میرے گناہوں کا انجام خدا کی ناراضگی ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا اور گناہوں کی سزا دی تو میرا کیا ہوگا. پھر آدمی اپنی ہر چیز میں اللہ کے حکم کو دیکھے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، مجھے کپڑے کون سے پہننے، مجھے بال کٹانے کیسے کاٹنے. نبی نے خبر دی ہے جو لوگ اپنے سر کے بال چھوٹے بڑے کاٹتے ہیں اللہ کی لعنت میں ہیں. نبی نے اپنی زندگی سے بال رکھنے والوں کے لیے بال کیسے رکھنا وہ بتایا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. بال رکھنے ہیں تو بال کیسے رکھنے، جو یہ اندھے دنیا کے فیشن کے روپ میں ہمیں حضور کی سنت کے خلاف کے بال دے اور وہ بال رکھنے ہیں، نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی لعنت میں جانا ہے. ہاں، ٹخنوں سے نیچے اپنے پینٹوں کو لٹکانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. نبی نے خبر دی ہے ما تحت الکعبین فہو فی النار، جو اپنی گھونٹی سے نیچے پینٹ پہنے گا اسے جہنم میں جانا ہوگا. دشمنوں نے فیشن کا لیبل لگا کر میرے دوستوں آدھا آدھا فٹ، میرے دوست لمبی لمبی، میرے دوست پینٹیں بنا کر میرے دوست بازاروں میں بیچنا شروع کیا، اور یہ مسلمان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا اس پینٹ کو پہن کر، خدا کو ناراض کروں گا. میں نے ایک مطلب پوچھا ہمارے کوئی پاس بیٹھے ہوئے کہ بھائی آپ پینٹ تو سستی مارا پہنو سکتے نا مل صاحب، بہت مہنگی ہوئی سی. تو دشمن نے ایک دنیا فیشن چلائی ہے نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کی لعنت کا راستہ. مسلمان کا بچہ ان فیشنوں کو میں مست ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانے سے جانے کہ بیٹا کیا ہے یہ، ٹھیک نہیں بیٹا، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا تمہارا. ماں باپ پیسے دیتے ہیں بال کٹانے کے 200-300 روپے، کون سے جو اللہ کی لعنت میں آنے والا راستہ اس میں. اور یاد رکھو، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو گناہوں کے لیے پیسے دیں گے، اللہ کے یہاں یہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں نبی والی محنت کو زندہ کرو، اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو اس محنت میں لگاؤ، گھر میں تعلیم کرو، گھر میں آخرت کے تذکرے زندہ کرو، तुम्हारे घरों में दुनिया भर की मेरे दोस्त तस्करे हैं और तुम्हारे मोबाइल में दुनिया भर की चीजें मेरे दोस्त सुनी जा रही हैं। नहीं सुनी जाए तो आखत को सुना नहीं जा रहा, अल्लाह की बड़ाई को सुना नहीं जा रहा। ईमान और ईमान के तस्करे हमारे घरों से खत्म हो गए। अब बताओ हमारे दिलों में ईमान आएगा कैसे? उस बैरक का नाम है ये। हाँ, अपनी मस्जिदों को मस्जिद नबी का नमूना बनाओ। अल्लाह के नबी की मस्जिद में दावत की मेहनत थी, अल्लाह के नबी की मस्जिद में तालीम के हलके थे, सीखने सिखाने के हलके थे। अल्लाह के नबी में ईमानी मेरे दोस्तों दावती और आमाल का और मेरे दोस्तों आमाल का माहौल था और खिदमत थी, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की खिदमत करना, अपना पेट काट कर दूसरों को खिलाने के एक माहौल था। वो आमाल थे। इन आमाल में एक एक मुसलमान, एक एक फर्द उम्मत मशगूल होता था और उन आमाल के नतीजे में जब एक ताजिर उन हलकों में बैठता था और सच्चाई के साथ तिजारत करने वालों का अंजाम क्या है, अल्लाह उन्हें क्या देगा और झूठ और बेमानी से तिजारत करने पर क्या अंजाम होगा, ये यहां सुनता था। इस पर इसके दिल में खौफ पैदा होता था। अपनी दुकान पर जाकर भी मेरे दोस्तों ये गलत नहीं करता था, सही तरतीब पर जाता था। यहां इसको पानी मिल रहा है, तालीम के हलकों में बैठता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट इन तालीम के हलकों में बैठता था और बैठकर सबूत समझता था कि रिश्वत का अंजाम जहन्नम है, मुझे रिश्वत नहीं लेनी। वो यहां उसकी तरबियत यहां होती थी। मुसलमान की तरबियत की जगह मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? जो मस्जिद के नबी के नमूने पर है, जहां दावत की मेहनत है, जहां तालीम के हलके हैं, जहां जिक्र इबादत का माहौल है, जहां एक दूसरे की खिदमत का माहौल है। वो आमाल उस मस्जिद में जिंदा थे जिसके नतीजे में मेरे दोस्त हर मुसलमान की जिंदगी में दिन ब दिन ईमान में कुव्वत पैदा हो रही थी, आखिरत का फिक्र बढ़ रहा था और उनके आमाल नबी के तरीके पर सीखकर करने वाले बनते थे और खिदमत खुदा खिदमत खल्क की बुनियाद पर अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बनते थे। तो ये मेहनत का मकसद ही मेरे भाइयों, 4 महीने 6 महीने 1 साल लगाकर फारिग नहीं है। अपनी जात से इन आमाल का पाबंद होना, अपनी मस्जिद में जिंदा करना और अपनी मस्जिद में के अतराफ में रहने वाले एक एक मुसलमान की खुशामद करके इस मेहनत को उन्हें मशगूल करना और इस मेहनत में मशगूल होकर अपनी दुनिया के असबाब में जाना, ये सबब हिदायत का। जब ये मेहनत हमारी मस्जिदों में और हमारी मस्जिदों से हमारे घरों में जब ये आमाल पहुंच जाएंगे तो फिर मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से हिदायत की मरकज हिदायत तो बैतुल्ला है, मरकज हिदायत तो बैतुल्ला है और बैतुल्ला में और कुछ नहीं है, यही आमाल है। और इन्हीं आमाल को जिंदा किया गया। अगर हमारी मस्जिदों का रूहानी ताल्लुक मेरे दोस्त इन आमाल हमारी मस्जिद ना करके अगर वो मरकज हिदायत से इसका ताल्लुक हो जाएगा और हमारे घरों में ये आमाल जिंदा करके हमारे घरों का रूहानी तक हमारी मस्जिद हो जाएगा तो वहां से जो 120 रहमतें दुनिया में उतरती हैं वो रहमतें यहां भी आएंगी इन आमाल पर। ये मेरे दोस्त हम सब की फिक्र की बात है, ये एक मेहनत है इन आमाल को जिंदा करना और इन आमाल को जिंदा करने के नतीजे में हर फर्द उम्मत जब इन आमाल में वक्त लगाएगा और इन आमाल में लगेगा तो अल्लाह ताला शानहू इसके दिल में नूर हिदायत उतारेंगे, इसके आमाल मेरे दोस्तों हुजूर के तरीके पर करने का इसमें मेरे दोस्तों जज्बा पैदा होगा और ये अपने आमाल जब नबी के तरीके पर अल्लाह को राजी करने से करेगा तो ये आमाल इसके लिए मकबूल होंगे और इन आमाल पर खुदा की रहमत आएंगी। ये एक मेहनत जिंदा करना है और ये हम सबको मिलकर करना है और इस मेहनत को समझने के लिए हमें निकलना है कि हमें तालीम में कैसे तालीम के हल्के कैसे करने, हमें दावत कैसे देनी। दावत एक अमल है मेरे भाइयों, नबी वाला अमल है। हाँ उस दावत के देने का तरीका और ढंग है, उसे सीखना होगा। हाँ मामू को बाप का साला कहोगे तब भी सही कहा आपने, लेकिन मामू नाराज हो जाएगा कि बेअदब है ये भांजा। अरे वो तो बाप का साला है ही, लेकिन अगर यही अपने मामू से कहेगा मामू जान है मेरे, तो ये मामू का भैंसा अंदर से दिल खुश हो जाएगा और वो कहेगा हाँ भांजा क्या कहता है, वो तो तमाचा मारेगा साला कहने वाले को, तो चले यहां से। तो दीन की बात अपने जवान बच्चों को कैसे कहना, अपने छोटे बच्चों को कैसे कहना, अपनी बीवी को दीन की बात कैसे समझाना, ये ढंग और सलीका अल्लाह के रास्ते की मेहनत में साहबा ने सीखा था, हम भी उसमें सीखेंगे और वो चीज हमारे अंदर भी आएगी मेहनत के नतीजे में। और फिर अगर सही तरीके से घरों में मेहनत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये जिंदगी हमारे घरों में ही मेहनतें जिंदा होने के बाद इसके नतीजे में हमारे घरों वालों में तकवा आएगा, तवक्कुल आएगा, अल्लाह का ताल्लुक आएगा, आखिर का फिक्र आएगा, नबी वाली जिंदगी पर चलने का जज्बा और हौसला पैदा होगा और हमारे घरों से ये गुनाहों की जिंदगियां निकलकर नबी वाली जिंदगी आएंगी, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों हमारे घरों का रूहानी ताल्लुक हमारी मस्जिदों से होगा और हमारी मस्जिदों का रूहानी ताल्लुक बैतुल्लाह से होगा और बैतुल्लाह पर खुदा की जो रहमतें आई हैं वो रहमतें हमारे आएंगी। यूं ही नहीं है, समझने की जरूरत है। इसमें भाइयों हिदायत दुनिया में जिंदा, उसके लिए हिदायत की मेहनत जिंदा करने की जरूरत है। हाँ अल्लाह वालों ने हमें जो घर से निकलने की तरतीब बताई वो सुन्नत की निर्दोष रोशनी में है और इन आमाल में लगने को कहा है कि इन आमाल में लगो, जितना मेरे दोस्तों आदमी अल्लाह की बड़ाई को बोलेगा, अल्लाह की बड़ाई को सुनेगा, अल्लाह की बड़ाई को सोचेगा, इतना उसके दिल में अल्लाह की बड़ाई उतरेगी। और जितना दुनिया को बोलेगा और दुनिया वालों को बोलेगा, इतना उनकी मेदोस आएगी बड़ाई। हाँ माल को बोलेगा तो माल की मोहब्बत आएगी, माल का यकीन आएगा, अल्लाह का यकीन नहीं आएगा। हमें अपनी जिंदगी में इस मेहनत को जिंदा करना है, अल्लाह को बोले अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह की बड़ी कुदरत है, अल्लाह हमारा पालनहार है, वो हमें पालने में किसी का मोहताज नहीं है, दुनिया की हर चीज उसकी मोहताज है, ये बोलते बोलते ये अंदर हमारे अंदिलों में उतर जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी हदीस में फरमाया अल ईमानो मा वकरा फिल कल्ब, ईमान की जगह तो दिल है, ईमान वो है जो दिल में उतर जाए, दिल में जम जाए, इसका नाम ईमान है। और जब ईमान दिल में जम जाता है तो वसद्दकहुल अमल, नबी कह रहे हैं कि जब ईमान दिल में उतर जाएगा तो ईमान की तस्दीक अमल करेंगे, यानी अब इसकी जिंदगी में ईमानी अमल आएंगे। ये झूठ नहीं बोल सकता, फरेब धोखा मक्कारी नहीं कर सकता, ये नमाज नहीं छोड़ सकता, ये बेहयाई के काम नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये जुल्म नहीं कर सकता, ये तमाम चीजें ईमान की सिफात हैं, अंदर ईमान उतर चुका है। अल ईमान मा वकरा फिल कल्ब वसद्दकहुल अमल, नबी ने हमें थर्मामीटर बताया है हर एक के लिए कि तू अपना अपने ईमान का थर्मामीटर देख, तेरी जिंदगी में क्या है, तो नमाजी अपनी जगह पर है, अल्लाह की ताकत की जिंदगी देने में क्या है। आदमी धोखे में है, शैतान इसे धोखे में डालता है। हाँ इसे मेरे भाइयों हमारी नमाजें नमाजें, हमारी नमाज नमाज नहीं है। हाँ अल्लाह ने कुरान में हर मुसलमान से ईमान वो मांगा है जो ईमान सहाबा का था, वो ईमान बिलगैब है। और कुरान को अल्लाह ने इसी से शुरू किया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये अल्लाह के कुरान में जो कुछ कहा जा रहा है इसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत का रास्ता बनेगी मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन? अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लावे। सहाबा का ईमान ईमान बिल गैब था, ईमान बिल गैब का मेरे दोस्तों मुतालबा है, और वो मेहनत के बाद उतरेगा अंदर। मक्की जिंदगी 11 साल की है सहाबा की, मक्की जिंदगी, और 11 साल कोई अमल नहीं था, वो भी मैं तो 11वीं हिजरी में, 11वीं नबी में मेरे दोस्तों सहाबा कौल की बिना पर नमाज फर्ज हुई है। 11 साल तक वही ईमान है। आसमान से कुरान उतर रहा है, ईमानियत का कुरान है, और मेरे दोस्त आखिर और आखिर की जिंदगी का कुरान मेरे दोस्त मक्का में उतरा है। फजाइल, जन्नत, जहन्नम, ये तमाम मेरे दोस्तों मक्का में उतरा वो इल्म, और अल्लाह की कुदरत के वाकयात मक्का में उतरे कि अल्लाह की कुदरत जिसके साथ हुई वो कामयाब हुआ है, और अल्लाह की कुदरत जिसके खिलाफ हुई है वो नाकाम हुआ है। अगली उम्मतों के वाकयात कुरान में बयान किए हैं, और वो मक्की जिंदगी में, और घंटों दारे अरकम में बैठकर सहाबा ने इसको घंटों सुना है, और इसी की दावत है, इसी की दावत है। 11 साल में वो ईमान जो अल्लाह के यहां मतलूब था वो दिलों में उतर चुका। अब नमाज आई, 2 साल मक्की जिंदगी में नमाज पर मेहनत करवाई गई। नबी ने यूं कहा कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, सीखो मेरी नमाज को देखो और ऐसी नमाज पढ़ो। और नबी ने कहा तुम्हारा जाहिर तो मेरी नमाज जैसा हो और तुम्हारा बातें अल्लाह का ध्यान वाला हो। अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा फैलम तकुन तराओ फैन हुई अराक, अल्लाह की इबादत इस ध्यान से कर कि अल्लाह को तू देख रहा है। अगर तुझे ये सिफत हासिल नहीं है तो कम से कम ये हासिल कर कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह का ध्यान, इस जान के साथ नमाज पढ़ने का अल्लाह के नबी ने हमसे मुतालबा किया है, ऐसी नमाज बनानी पड़ेगी। सहाबा ने मेहनत करके बनाई वो नमाज। हाँ, जो नमाज जब बन गई तो उस नमाज से वो इस्तेदाद पैदा हो गई कि अल्लाह का जो भी हुक्म जिस वक्त भी जिस हाल में आए उस हुक्म को पूरा करना मेदों से हो गया। जब तक नमाज नहीं बनी वहां तक शराब हराम नहीं हुआ। शराब की शराब पीकर मैं तो नमाज में जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो नमाज 2 साल में वो उस नमाज में वो जान पड़ गई तो फिर अल्लाह ने शराब को हराम किया। चलो अहकाम आया, अंदर इस्तेदाद मौजूद थी। हाँ, उलमा कहते हैं सहाबा में इतनी जबरदस्त इस्तेदाद पैदा हो चुकी थी कि अगर 50 नमाजें भी फर्ज होती तो सहाबा 50 नमाज भी पढ़ते। इतनी इस्तेदाद पैदा हुई थी। उस इस्तेदाद के पैदा होने का 5 की नमाज आई है तो और आसान है। 50 नमाज का सवाब तो मिलेगा ही हलाल में, 5 नमाजें। सहाबा में ईमान पर मेहनत करते करते अपना पूरा माल खर्च करने की इस्तेदाद पैदा हो चुकी थी। अगर पूरा माल खर्च करने का हुक्म आता तो सहाबा खर्च कर देते, लेकिन अल्लाह ने जकात फर्ज की कि भाई चलो 40वां हिस्सा दो। जकात देना आसान हो गई। अल्लाह के नाम पर जान देना ये इस्तेदाद पैदा हो चुकी थी। अब अल्लाह के रास्ते में जाना आसान हो गया। हाँ, अंदर में दोस्तों अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के नबी के हुकूक और खुदा की मखलूक के हुकूक, इसको पूरा करने के अंदर फिक्र और अंदर वो मेरे दोस्तों पैदा हो चुका था, जिसकी बिना पर हर एक के हक अदा करना आसान हो गया था। फिर अखलाक में खुदा क्या देगा, अखलाक में क्या देगा, तालीम के हलकों में सुन सुन कर दिलों में मेरे दोस्तों अखलाक के पर खुदा के वादों के यकीन अंदर आ चुके थे, जिस पर कि मैं ये करूंगा तो मुझे अल्लाह ये देगा। अखलाक, इसमें भाइयों آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے حال پر ہم رحم کھائیں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں، اپنی نماز کو صحیح کرنے کا فکر کریں، 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پر گزارنے کو سیکھیں، ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کو حق ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں، اللہ کے لیے جیئیں اور اللہ کے لیے مریں، یہ ہمارے اندر کا جذبہ ہو، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کا بڑا بننے کے لیے نہیں، دنیا ہاتھ بٹورنے نہیں، ہاں اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے دین کے لیے جینا ہے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، خدا کے انسان، خدا کے مخلوق خدا کو پہچان لے، وہ آخر کی زندگی سے ناکامی سے بچ جائے، اس کا فکر اور محنت ہمارے اندر میں اس کا جذبہ پیدا ہو، یہ موت سے پہلے پہلے کر لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوش نصیب اللہ کا بندہ ہے، اللہ اسے موت سے پہلے پہلے دے دے، اس کو حاضر کرنے کے لیے ہے میرے دوستو، رہی مقدر کی دنیا تو دنیا تو اللہ تمہاری مقدر کے حلال میں دے گا، ہاں بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب آخرت کو سامنے کر زندگی گزارنا شروع کرو گے، آخرت ہی کے لیے سفر کرو گے اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کا نظام بناؤ گے تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پیروں میں ڈالے گا، یعنی دنیا تو اے بچوں، اے بھائیوں، اے جوانوں، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو یہ بتاؤ، ارے بعد میں ابھی تو ہم بھی وضو کریں گے یار، کیا وضو کرنے جانے جا رہے ہیں، سب کے سامنے بیٹھو آخر تک، جیسے نماز اللہ اکبر کہہ کے پوری کی تو سلام پھیرنے تک اس میں رہنا ہے، بیچ میں کہ جانا نہیں ہے، ایسا نماز کی سیوت ہر عمل کرو، مشن میں بھائی ہو، آپ اللہ سے گزارش ہے، رہی بات اللہ کے راستے کی محنت آسان کس کے لیے ہوگی، جس کے لیے اللہ آسان کرے گا، اور آسان کس کے لیے ہوگی، جو اس کا فیصلہ کرے گا، صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا وہ کلمہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اب آج سے اللہ ہی کی ماننی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور نبی ہی کے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کے خلاف جو بھی ہے اسے چھوڑنا ہے، وہ فیصلہ تھا ان کا، اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے، یہ فیصلہ اندر سے ان کا تھا، تو آسمان سے اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اوپر فیصلہ ہو گیا، اچھا ہے میرے بندو، ہاں تمہارے اندر بہت سے ہیں وہ جو 5 بجے کی نماز نہیں پڑھتے لیکن جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے، ان کو جمعہ کی نماز میں کون لاتا ہے، کون لاتا ہے، اللہ لاتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، 5 بجے کی نماز کیوں نہیں توفیق نہیں ملتی، اس کے اندر کا فیصلہ کہ نماز جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا، یہ اس کا اندر کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر خدا آسمان سے توفیق دیتا ہے کہ اچھا میرے بندے تو نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو بمبئی میں ہوتا تو وہاں بھی اللہ توفیق دیتا ہے، وہاں بھی مسجد تلاش کرتا ہے، ہاں اور جن کے فیصلے ہیں وہ میں تو ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر جگہ رستہ نکل آتا ہے، لیکن اسی کو تم یہی میں 205 جمعہ کی نماز پڑھنے والا اس کو کہو بھائی یا جمعہ نہیں نماز پڑھے سر 5 کی نماز نہیں پڑھنا نہیں کر ان شاء اللہ اندر کوئی فیصلہ نہیں ہے، جیسے تم لوگ ہم کو چھترتے ہو، ہم دسے گے تو ان شاء اللہ، پر ان شاء اللہ شو، حالانکہ ان شاء اللہ بولنے کا حکم کس کو ہے کہ کسی کام کا فیصلہ کر کے پھر ان شاء اللہ گئے، کہ میں تو نکی کر ہی لی دوج ہے ان شاء اللہ اگر اللہ ہی چاہے تو اس میں ابدیت کیا رہا، وہ کہ مسئلہ تو میرے پاس اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ کہنے کا حکم اس لیے ہے کہ آدمی چاہے کتنا ہی پکا ہو، کتنا ہی اس کے کام کے بننے کو اس کو یقین ہو، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ گئے، تو یہ اگر اس کو کہو نا جمعہ کے دن کسی مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے والا نکلے نا مسجد سے اور تم کھڑے ہو ابراہیم آپ کی جمعہ نہ نماز پڑھو عارش، تو یہ بات سن کے جاتے جاتے رک جائے گا، کیا کیا پوچھے گا، ताजी उसको होता है। अगर आप फिर दोबारा अगर भाई ब्रेक दिया जवाब तो आप दिया तो फिर उसका उसका उसके चेहरे का वो बदलेगा, अभी भी ये नहीं समझेगा ना। और फिर अगर कहेगा अरे जवाब तो आप तीसरी वो फिर कहे क्या क्यों पूछा मुसलमान न थे यू कह पहला मुसलमान न थे तारा बापनी मस्जिद से ये हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं ये हकीकत है। इतना अपने दिल में पक्का है वो कि नमाज नहीं छोड़ूंगा। हमारे गोदरे में बाजे ट्रक ड्राइवर गाड़ी भरी हुई पड़ी है और उसका सेठ कहता है रस्ता में पड़ी थी जुमा तो कहता तारी गाड़ियां ही रहे अले जुमा पड़ी नहीं निकली गई थी। यह है ये अंदर से इतना पुख्ता है इस पर लग आई मेरे बंदे तूने तय कर लिया तो मेरा घर तो खुला है आ जा मेरे घर में आ जा। पांच वक्त की नमाज पढ़ने वालों से पहले आता है जुमा की नमाज पढ़ने वाला मस्जिद में अल्लाह लाता है उसको उसके अंदर के फैसले पर। हाँ इसी मेरे भाई मेरा अजीजो हम और आप जब अल्लाह से मामला कहे अल्लाह अब तो तेरा बंदा बन के जीना है और तेरे नबी का उम्मती बन के जीना है जैसे साहबा ने तेरे रास्ते में कुर्बानी दी ईमान सीखा अपनी जिंदगी बनाई अल्लाह अब तो हमें भी वो चीज है चाहिए। इस फैसले को जब तुम तय करोगे तो फिर आसमान वाला फैसला करेगा और हर काम आसान होगा। आज भी अल्लाह के हजारों बंदे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं मजदूर निकल रहे हैं रोजाना की टंकियां काम करने वाले वो अल्लाह के राह में चल रहे हैं जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं। हाँ जो लोग ये कहते थे कि टाइम इज मनी जो जिनकी जुबान का ये बोल था कि वक्त वक्त पैसा है उन मुल्कों में भी दोस्तों आदमी चार चार महीने की जमात में निकल रहा है पैदल जमातों में चल रहा है उसके बाद तमाम असबाब मौजूद तब भी अल्लाह की दी को मैं दे रहा है मेरे दोस्तों अल्लाह तुम्हें और हमें भी हमारे लिए आसान कर देगा। और जितना अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दोगे इतना अल्लाह दुनिया तुम्हारे लिए आसान कर देगा और जितनी जिम्मेदारी उठाओगे इतनी अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी। हाँ और तुम्हारी अंदर की मैदो माए बनेगी अंदर की अल्लाह का ताल्लुक जिसे अल्लाह का ताल्लुक बन जाए और क्या चाहिए। दुनिया में दोस्त पेशाब करने वालों के ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर आदमी पड़ता है आ साहेब ना आ साहेब ना आ साहेब हालांकि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और अल्लाह तो बड़ी कुदरत वाला सब कुछ उसी के हाथ में है उसका ताल्लुक मिल जाए वो अल्लाह आप हमें ये कह दे तू मेरा है कितनी बड़ी चीज है ये मेहनत इसकी है ईमान की मेहनत है। हाँ अल्लाह के बनेंगे अल्लाह के दीन और दीन के लिए कुर्बानी साहबा की तरह अल्लाह के नबी की तरह हम देंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाएंगी। अल्लाह हमें दीन से नवाजेगा और हमें तकवा देगा तवक्कुल देगा मैं तो विल पावर खुदा देगा विल पावर। हाँ जब आदमी का ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है ना फिर कोई परेशान उसको परेशान नहीं कर सकती और कोई काम मुश्किल नहीं है उसके लिए सब आसान है अल्लाह करेगा और करता है अल्लाह व्हील पावर। आज हमारे पास व्हील पावर नहीं है हिम्मत ही नहीं है दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने की मस्जिद में आके नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं इसमें व्हील पावर ही नहीं है। और साहबा के पास व्हील पावर दुश्मन के मुकाबले में खड़े हैं मुकाबला हो रहा है और साहबा को वहां नमाज की फिक्र है और एक नमाज साहबा ने पढ़ी दुश्मन ने देखा यार मौका बहुत अच्छा था नमाज में अगर हमला कर लेते तो हमारा काम बन जाता तो ये तो एक ने कहा अभी भी नमाज पढ़ेंगे ये पांच बजे की नमाज पढ़ते हैं उसमें देख लेंगे यहां मशा ये हो रहा है और ऊपर वाला सब देख रहा है कि क्या हो रहा है। हुजूर को तो पता नहीं था कि उन्होंने क्या मशवरे किए हैं। अल्लाह ने ऊपर से जिब्रील को भेजा जाओ मेरे नबी के पास जाओ कि अब जो आइंदा नमाज पढ़ोगे ना उस नमाज की तरतीब बदल दी अल्लाह मियां ने कि आधे तुम्हारे साहबी आपके साथ नमाज पढ़े और आगे दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे और जब ये तुम्हारे साथ आपके पास एक रकात पढ़ लें तो ये उसी हाल में दुश्मन के पास मुकाबले जाए और वो आके आपके साथ नमाज पढ़े सलातुल खौफ अल्लाह ने उतारी। हाँ اللہ تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے, نبی والا کام کریں گے, تو اللہ خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کے بچ دیں گے. مزے اڑاؤ گے یار, موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. الموت جسر یوسف الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک دوست کی ملاقات دوسرے دوست سے کرا دیتا ہے. اللہ سے تعلق ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, اور اس حال میں موت آ رہی ہے تو خوشی خوشی جائے گا مزے سے. ہاں اس میں بھائیو سب کے سب طے کرو, اس محنت کو یوں ہی ٹالنا نہیں ہے. ٹھیک سے یہ تو کہتا رہے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تجھے تیری زندگی بنانا چاہتا ہے, اس لیے اللہ نے دین کی محنت کو زندہ کیا ہے اور تیرے بھائیوں کو تیرے پاس بھیجا ہے, اور تیرے گھر گھر پر خدا جماعتوں کو بھیجتا ہے کہ تو زندگی اپنی صحیح کرو, ایمان پر آؤ, اعمال پر آؤ. اللہ ہمارے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. جو اللہ کی اس منشا پر اپنے آپ کو ڈال دے گا, اللہ اس کے حالات بنا دے گا. میرے بھائیوں اپنی زندگی, تمہاری اولاد کو دین دو, تمہاری اولاد کو دین دو. دنیا دے کر مرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد پریشان ہو جائے گی. دین نہیں ہے, دین نہیں ہے. تمہارا جو اعمال گناہوں میں ختم ہوگا, خرچ ہوگا, ان کی لڑائیاں ہوں گی آپس میں دنیا کے خاطر. کیوں؟ دین نہیں ہے. انہیں دیندار بناؤ, ایماندار بناؤ, اور پھر تمہاری مقدر کا جو تمہارے پاس دینا, لیکن ایماندار بنا کر. وہ باپ بڑا ظالم ہے جو اپنے بچے کو میرے بھائی کو موٹر سائیکل چلانا سکھائے نہیں, اور اس کو موٹر سائیکل دے کے جا چلاؤ تو کیا ہوگا؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, پریشان ہو جائے گا. اس باپ کو تو پہلے اسے موٹر سائیکل چلانا سکھانی پڑے گی, اور پھر میرے دوستوں اسے موٹر سائیکل دینی چاہیے تھی. ہاں ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو دین کی محنت میں لگا کر ان میں وہ استعداد پیدا کرنی ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے اپنے کاروبار میں اللہ سے ڈر کر کاروبار کرنے والے بنے, ایمانداری سے ایمانداری کے ساتھ کرنے والے بنے, اور اللہ کے دیو مال خدا کی رضا اور خوشی کے کاموں میں لگانے والے بنے. وہ زندگی سکھا کر اگر تم دنیا دے کر جاؤ گے تو یہ تمہارا میرے دوست احسان ہے. نہ نماز پڑھیں نہ کچھ پڑھیں, اور دنیا میرے بچوں کی دنیا دنیا ان کو پیسے دینے کے چکر میں آدمی میرے دوست پھر وہ بچے اپنی زندگی کو اور خراب کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو سب کے سب تک طے کرو. دیکھو ابھی تشکیل کے وقت میں اٹھنے کی پیچھے جانا نہ بناؤ. تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے, ہم تمہیں ہاتھ دے کے خدا کے لے کے نہ سوچو, اپنی زندگی رخ کے بدلو, دین کی محنت کو زندگی کے اندر داخل کرنے کی فکر کرو, اور اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی محنت میں لگنا آسان کرے گا, اور دین کی برکتیں, دین آئے گا اپنی تمام رحمتیں برکتیں مدد لے کر آئے گا تمہارے گھر میں. تمہارے گھر میں بجلی آئے گی تو بجلی اپنے تمام فائدے لے کر آئے گی. بجلی آئی گھر میں پنکھا آیا, بجلی آئی گھر میں اے سی آئی, بجلی آئی گھر میں میرے دوستوں فریج آیا. ہاں بجلی آئی, جب تک بجلی نہیں آتی وہاں تک گھر میں کچھ نہیں آتا. ایسے جب دین آئے گا تو دین اپنی برکتیں رحمتیں مددیں محبتیں یہ سب لے کر آئے گا. سب تیار ہو؟ آخر تک بیٹھے میں ہمارے گزارش تو یہ ہے کہ ہماری ایک تشکیل ہوگی, اس تشکیل کے وقت میں سوچو, اللہ سے دعا مانگو گے اللہ یہ تیرے بندے ہم سے مطالبہ کرے, تیرے دین کی لے کر رہے ہیں, ہماری ہمت نہیں ہمیں ہمت دے, ہمیں توفیق دے, ہمیں قبول فرما لے. یہ دعا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت اللہ تمہیں توفیق دے دے گا. اور اگر تشکیل سے بھاگو گے, پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے, تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کی محنت سے پیٹ پھیر کر جانے سے پناہ مانگی ہے. ہاں اس لیے بھائیو آخر تک بیٹھنا طے کر لو, کوئی زیادہ دیر تشکیل نہیں ہوگی. اپنے بارے میں اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھو سوچو, ایک دوسرے کو سمجھاؤ, ایک دوسرے کو میرے دوستوں اس کے مسائل کا حل بتاؤ. بعض مرتبہ ماضے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں لیکن شیطان پہاڑ بتاتا ہے, آپ اس کو حل بتاؤ گے حل سمجھ میں آئے گا, بھائی تیار ہوگا تو وہ تمہارے نامائد میں لکھا جائے گا تمہاری محنت پر تیار ہوا ہے. اس لیے بھائی دوستو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لو کہ آخر تک ہم بیٹھیں گے. ارے بیٹھو گے؟ पीछे वाले बैठेंगे ना, अगर पीछे वाले जमेंगे तो आगे वाले भी जम जाएंगे, और पीछे वालों ने अगर थोड़ा भी इंतजार किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कारण से आगे भी पड़ेगा। लिहाजा अपने आप को थोड़ी इतनी देर आपने माशाल्लाह सुकून के साथ चैन के साथ बात सुनी है, अब दो थोड़ी देर हमारी मदद करो कि भाई तश्कील भी जमकर हो जाए, थोड़ी फिक्र करोगे इंशाल्लाह। इसी मजमे में बहुत से अल्लाह के बंदे जिनके दिलों में अल्लाह ने बात डाली है वो तैयार होंगे और इसका सवाब हम सबको मिलेगा। लिहाजा सबके साथ बैठे रहे और जिन अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह ने बात डाली है वो खड़े होके बोलना शुरू करें अल्लाह से, अल्लाह से मामला करें कि अल्लाह हम तैयार है, हमारे लिए तो आसान कर दे, अपने आप को पेश करें और खड़े होना शुरू करें। अब बोलना शुरू करें कौन कौन, चार चार महीने के लिए अल्लाह के राह में अपनी आखिरत बनाने, अपनी जिंदगी बनाने और उम्मत में इस मेहनत को जिंदा करने के लिए अपनी जान माल के साथ कुर्बानी देने के तैयार हो रहा है, वो अपने आप को पेश करें और खड़े होकर बोलना शुरू करें। पहल करो, पहल का सवाब बहुत है, आपके उठने पर और जितने उठेंगे उनका भी सवाब आपको मिलेगा, और पहल करने वालों को अल्लाह अपना मुकर्रब बंदा बनाता है। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो सबकत करने वाले दिन के कामों में होते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं। याद रहे दोस्तों, खड़े होकर बोलो और इस फजीलत को हासिल करो।
फरमाया भाई माशाल्लाह
माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे कबूल हो, अल्लाह कबूल फरमाओ, अल्लाह इनकी जानों में, मालों में, ईमान में, आमाल में, आबरू में, इज्जत में खुदा बरकत नसीब फरमाओ, और इनकी नस्लों को खुदा कबूल हो। खड़े हो तो खड़े होने शुरू करें। जितनों ने जहां जहां अपने मकामात पर इरादे किए थे और नाम दिए थे वो इस मजमे में, तो भी खड़े हो जाओ। तुम्हारे खड़े होने पर इंशाल्लाह तुम्हारे और भाइयों को रहमत होगी, वो भी खड़े होंगे, अल्लाह इसका सवाब भी तुम्हें देगा, और जितनी देर खड़े रहोगे इसका सवाब अलग मिलेगा। अपने आप को पेश और खड़े होना शुरू करें और खड़े हो जाओ। हर जगह से मांगरोल है, ये डारी है, हमारा वेरावल है और हमारा जूनागढ़ है, ये सब जगहों से मैं तो जितने जहां जहां और बस्तियों से जिन्होंने तय किया है वो अपने आप को खड़े होकर पेश करो और खड़े हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, देर ना करो, दिल में बात आने के बाद